ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतरा श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 9 प्यार 278 और 279। पहले मैं 78 पढ़ लेता। ए मत तारे घरे गर्व चूर कई, फल्गु तीर्थ तवे चले आयला गौर हरी। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने तत्ववादियों के गर्व को चूर चूर कर दिया, तब वे फल्गु तीर्थ गए। तो इस अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं। तीर्थकूपे विशाल राय करी दर्शन, पंचाप्सरा तीर्थे आयला सचिर नंदा। तीर्थकूपे विशाल राय करी दर्शन, पंच अप्सरा तीर्थे आयला सचिर नंदा। त्रिपकूपे विशालार करी दर्शन, पंच अप्सरा तीर्थ आयला सचिर नंदा। त्रितकूपे त्रितकूप विशालार, विशाला नामक विग्रह के करी करके दर्शन दर्शन पंच अप्सरा तीर्थे, पंच अप्सरा तीर्थ स्थान को आयला आए सचिरनंदन, सची माता के पुत्र। माता सची के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु तब त्रितकूप गए और वहाँ पर विशाला अर्चा विग्रह का दर्शन करने के बाद वे पंच अप्सरा नामक तीर्थ स्थान गए। स्वर्ग की अप्सराएं प्रायः नर्तकियाँ कहलाती हैं। स्वर्गीय ग्रहों की युक्तियाँ अत्यंत सुंदरी होती हैं और यदि पृथ्वी पर कोई स्त्री अत्यंत सुंदर होती है तो उसकी तुलना अप्सराओं से की जाती है। लता, बुद्बुदा, समीची, सौरभेई तथा वर्णा नामक नाम की 5 अप्सराएं थी। कहा जाता है कि अच्युत ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने इन 5 अप्सराओं को भेजा था। स्वर्ग के राजा इंद्र ऐसा करने का अभ्यस्त था। जब भी इंद्र किसी व्यक्ति को कठिन तपस्या करते देखता है तो वह अपने पद के बारे में भयभीत होने लगते हैं। इंद्र सदैव चिंतित रहते थे कि यदि कोई व्यक्ति उससे अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो उसका वह उच्च पद छिन जाएगा। अतः जब भी वह किसी ऋषि को तपस्या करते देखते हैं तो वह उसे विचलित करने के लिए अप्सराएं भेज देते थे। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महान ऋषि भी उसकी योजना के शिकार बन गए थे। जब 5 अप्सराएं अच्युत ऋषि का ध्यान भंग करने पहुँची तो ऋषि ने उन्हें दंड देकर श्राप दे दिया। फलस्वरूप वे अप्सराएं सरोवर में मगरमच्छ बन गई और वह सरोवर पंच अप्सरा कहलाने लगा। भगवान रामचंद्र भी इस स्थान पर पधारे थे। श्री नारद मुनि के वृतांत से पता चलता है कि जब अर्जुन तीर्थ स्थलों की यात्रा करने गए तो उसने 5 अप्सराओं के शापित होने का पता चला। उसने उनका इस निंद अवस्था से उद्धार किया और उस दिन से ये सरोवर पंच अप्सरा तीर्थ बन गया। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पदकम श्री गुरु श्री श्री राधा कृष्ण बला सहगण श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सरस्वती राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजमानु सुते देवी प्रणमामि हरि जय श्री कृष्ण चैतन्य नंदा श्री हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम नमो शिवाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदान स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती वे गौरवाणी प्रचारी ने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देवता तो जैसा कि आप लोग काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं कि महाप्रभु जो है वो साउथ इंडिया की तरफ प्रस्थान किए। आजकल हम लोग भी साउथ इंडिया में ज़्यादा आ रहे हैं। तो सारोम भट्टाचार्य महाप्रभु सारा सामान पैक करके निकले साउथ इंडिया की तरफ। उन्होंने जाने का प्लान किया, सब नित्यानंद प्रभु वगैरह से सबसे मिले। तो फिर लास्ट में उन्होंने सोचा कि चलो सार्वभौम भट्टाचार्य से भी मिल लेते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी से मिले तो सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर तो जैसे वज्रपात हो गया। उन्होंने बोला कि अगर मेरा पुत्र भी मर जाए ना तो भी मुझे इतना वियोग नहीं होगा, इतना दुख नहीं होगा कि जितना आपके जाने का मुझे दुख हो रहा। तो फिर बोले ठीक है, अब आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपने प्लान बना लिया तो आप तो करेंगे जो कर, लेकिन मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि आप कुछ समय तक यहाँ रहिए और हमको अवसर दीजिए कि हम आपके लिए कुछ प्रसाद बना के खिला सकें। तो महाप्रभु ने उनके विनम्रता देखी। तो महाप्रभु हालांकि तैयार थे जाने के लिए, लेकिन फिर भी दो तीन दिन ना पाँच दिन हाँ दो दिन पाँच होते हैं हाँ। तो पाँच दिन जो है वो हरा गए। तो क्या है कि तो महाप्रभु को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक आभूषण होना चाहिए, क्या है, विनम्रता है। तो सबसे पहले महाप्रभु ने जब शिष्टाश्रम दिया तो सबसे पहले ही श्लोक क्या है, तणाद भी सुनिश्चय में तरोर पेश। तो एक जो है ना भक्त का ये आभूषण है कि उसको क्या होना चाहिए, तरण के समान सहनशील होना चाहिए, तभी जो है वो ऐसा ही भक्त जो है वो प्रचार कर सकता है और लोग ऐसे ही व्यक्ति से लोग प्रभावित हो सकते हैं। अगर तणान भी नहीं है, अगर विनम्र नहीं है तो महाप्रभु को आकर्षित नहीं कर सकता है। जब रामकेली में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिले तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने भी क्या है, अपनी बहुत विनम्रता प्रकट की। उन्होंने बोला कि हम तो जगाई मदाई से भी ज़्यादा पतित हैं। महाप्रभु सुनते हैं उनकी विनम्रता के बारे में तो कान बंद कर लेते हैं, बस 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 और मत कहो, मेरा हृदय बढ़ा जा रहा है हाँ। तो इस तरीके से जो है महाप्रभु विनम्रता को जो है बहुत पसंद करते हैं हाँ। उसके बाद जो है वो महाप्रभु पाँच दिन के बाद जाने के लिए प्रस्थान हुए। फिर बाद में उन्होंने बोला कि चलो क्या करते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। तो उनको भी सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए ले गए और वहाँ से फिर वो जाने लगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या करा, उनको कुछ प्रसाद पैक करके दिया, एक विनम्रता। और उन्होंने कहा कि एक और निवेदन है आपसे कि ये प्रसाद है, इनको आप रास्ते में पा लेना। तो महाप्रभु को बहुत सारा प्रसाद दिया। तो इस तरीके से फिर वो अलालनाथ होते हुए कहाँ गए, दक्षिण भारत की ओर गए। तो और वहाँ पर क्या है, उन्होंने क्या किया, प्रचार। अलग अलग तीर्थों पे जाते थे और अलग अलग लोगों से मिलके उनको जो है कृष्ण भावनाथ का प्रचार करते थे तो साधु होता है, संत होते हैं, तो उनका ये कार्य होता है कि किससे जिससे मिले उसे कृष्ण भावना व्रत का ज्ञान दें, प्रचार करें, उसके बारे में बताएं। तो ये जो है महाप्रभु सारे तीर्थों में जाकर यही कराया करते थे। तो महाप्रभु जैसा कि आप जानते हैं कि उनके आने का दो कारण थे, एक आंतरिक कारण एक बहिर्कारण। आंतरिक कारण तो आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे, गौर पूर्णिमा के समय हम लोग सुनाते हैं है। तो कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, वो महाभाव का आस्वादन करना चाहते हैं है। तो वो जो है महाप्रभु के रूप में आते हैं है। तो ये है उनका। और दूसरा बहिर्कारण था कि बद्ध जीवों को उद्धार करना, यहाँ पर कृष्ण के बारे में बताना, यहाँ पर राधारानी का राधारानी की महानता को बताना कि राधारानी कितनी महान है। इससे पहले अगर हम लोग देखते हैं महाप्रभु से पहले तो राधारानी का विग्रह कहीं स्थापित नहीं हुआ है। आप देखें गोविंददेव जी भी अकेले थे, बाद में राधारानी आई है, लक्ष्मी थी, और हमारे जो मदन गोपाल जी हैं वो तो अभी तक अकेले ही हैं। तो इस तरीके से देखें तो महाप्रभु से पहले जो है वो राधारानी का इतना प्रचार नहीं था। एक बार जो है वो कृष्ण बहुत उदास से बैठे हुए थे, सखा लोग खेल रहे थे लेकिन कृष्ण बहुत उदास से अकेले बैठे हुए सोच रहे थे बहुत गहराई से। तो फिर सुवर्ण ने देखा कि अरे कृष्ण कहाँ है, देखा कृष्ण अकेले से बैठे हुए हैं उदास से। उन्होंने बोला अरे कृष्ण उदास बैठा हुआ है आज क्या कारण है। तो फिर उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि क्या बात है कृष्ण तुम बड़ा उदास से लग रहे हो। उन्होंने बोला हाँ मैं बहुत उदास हूँ, असल में मैं राधा रानी की सेवा करना चाहता हूँ लेकिन ये राधा रानी मुझे कभी भी सेवा का अवसर नहीं देती है। जब भी मैं कोई सेवा करना चाहता हूँ राधा रानी तुरंत मना कर देती है कि नहीं हम आपकी सेवा के लिए बने हैं है? आप हमारी सेवा के लिए नहीं। लेकिन मेरी बहुत मन की इच्छा है कि मैं राधा रानी की सेवा करना चाहता हूँ, कैसे करूँ मुझे कुछ उपाय समझ में नहीं आ रहा। तो सुबल ने बोला कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तुम्हें कर सकता हूँ, यहाँ राधा रानी की सेवा का अवसर दे सकता हूँ। अच्छा कैसे, बोले अगर तुम ये मेरे लिए कार्य कर दो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए ऋणी रहूँगा। तो बोले ठीक है चलो मेरे साथ। तो गए तो कृष्ण को क्या करा उन्होंने, स्त्री बना दिया हाँ। स्त्री बना दिया और सारा उपाय बता दिया। तो ये कृष्ण जो है जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर राधा रानी का कुंज था, वहाँ के बाहर जाके रोने लगते हैं स्त्री के रूप में रोते हैं। तो वहाँ से ललिता विशाखा आती है, कहती है अरे ये कौन है, इतनी सुंदर स्त्री है और रो रही है, तो क्या हुआ आपको। कहते हैं कि मुझे मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है? और मैं जो है बेसहारा हो गई हूँ, मेरा कोई घर परिवार नहीं है, मैं इधर उधर भटक रही हूँ, जवान लड़की हूँ, डर भी लगता है, तो मुझे कोई सहारा नहीं मिल रहा है हा? तो उन्होंने बोला अच्छा तो क्या किया जाए। उन्होंने बोला कि अगर मुझे आप कुछ सेवा दे दो, मैं राधा रानी कोई सेवा दे दो, मैं सारी सेवा कर लूँगी, सब जो भी सेवा बोलोगी मैं कर लूँगी, मुझे यहाँ पे एक सर्वेंट के रूप में रख लो। तो उन्होंने बोला कि तुम क्या क्या जानती हो। बोले मैं सब सब कुछ कर लेती हूँ, बहुत सारी सेवा कर सकती हूँ, कोई भी सेवा बोल दो मैं कर लूँगी हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम लेकिन यहाँ पर जो है जो दक्ष होते हैं ना उनकी आवश्यकता है राधा रानी की सेवा में। बोले नहीं मैं बहुत दक्ष हूँ। बोले सब ऐसे ही बोलते हैं मैं बहुत दक्ष हूँ, क्या सेवा कर सकते हो। बोले अच्छा मैं तुम्हारी वेणी गुंथूँ। उन्होंने बोला हाँ चलो गुंथो। तो उन्होंने कृष्ण जो है उनकी वेणी गुंथी, और वेणी गुंथी तो वो सब हैरान हो गई, अरे बाप रे बाप ऐसी वेणी गुंथे, क्योंकि कृष्ण तो बहुत एक्सपर्ट है वेणी गुंथने। तो बड़े हैरान हो गए, कह रहे भाई ऐसे तो गोपियाँ भी नहीं कर सकती, इतनी इतनी जो है फर्स्ट क्लास वेणी गुंथी है। तो फिर वो ठीक है चलो तुम पास हो गई, चलो राधा रानी की सेवा करो। तो राधा रानी को बताया कि राधा रानी ये सखी आई है, इसको परिवार से निकाल दिया गया है, तो आप इसको सेवा में लगा दो, ये वेणी गुंथने में बहुत तेज है। कहते नहीं मैं वेणी गुंथने में नहीं बहुत सेवा में एक्सपर्ट हूँ। अच्छा राधा रानी कहती है कि ठीक है इसको अवसर दो मेरी वेणी गुंथने का। तो राधा रानी की वेणी गुंथती है तो सब अवाक रह जाते हैं, भाई ये क्या कैसी लड़की है, क्या कला है इसके पास।
उन्होंने बोला कि अच्छा मैं राधा रानी के लिए कुकिंग करूँ, कहते हाँ चलो करो कुकिंग, तो कुकिंग करती है और जब वो खाते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, भाई ऐसा प्रसाद, सारे जो भी कार्य करती है एक्सपर्ट बोलते हैं अरे वो व्यक्ति कितना पागल होगा जिसको घर से बाहर निकाल दिया कितना मूर्ख होगा, अरे ये तो इतनी दक्ष लड़की है, इतनी होशियार लड़की है, क्या कैसा पति होगा इसका तो फिर ऐसे सेवा करती रहती है करती रहती है। एक हफ्ता बीत जाता है, एक हफ्ता बीत जाती है, तब ललिता विशाखा आती है, देखती है कि अरे ये क्या है, इस बेचारी सखी को देखो सेवा में इतनी व्यस्त है, इतनी सेवा करती है, एक हफ्ते से इसने कपड़ा भी नहीं चेंज किया है और राधा रानी क्या कर रही है, राधा रानी ख्याल नहीं करती अपने सखियों का, सीधे राधा रानी के पास जाती हैं, डांटने लगती हैं, ललिता जी कहती है तुम क्या करती हो अपने सखियों का ध्यान नहीं रखती हो, मैं कौन सी सखी का ध्यान नहीं करती, कौन ऐसा है जो यहाँ पे इसका मैं ध्यान नहीं करती, अरे जो नई सखी आई है एक हफ्ते से वो वही कपड़ा पहनी हुई है तुमने देखा है, अरे अच्छा एक हफ्ते से वही कपड़ा पहनी है, अरे मैं तो पता नहीं क्यों मैं तो इसके चेहरे से नीचे जाती नहीं कभी, इसका चेहरा मुझे बड़ा आकर्षित करता है, पता नहीं इसके अंदर क्या ऐसा जादू है कि मैं इसे बहुत आकर्षित होती हूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है अब ऐसा करो, ठीक है अब इसके वस्त्र चेंज कराओ और मेरे मेरा जो विशिष्ट है वो इसको डायरेक्ट दो। तो ललिता विशाखा जाती हैं, कहती हैं कि राधा रानी तुम्हें बुला रही है, कहती है अच्छा ठीक है, तुरंत जाती है, हाँ राधा रानी बताइए क्या सेवा है, बोले तुम ऐसा करो आज वस्त्र चेंज कर लो, हैं मुझे क्षमा करना मैं तुम्हारे वस्त्र देख नहीं पाई, तुम्हें एक हफ्ते से वही वस्त्र पहनी, कहते नहीं राधा रानी बस ये सेवा मत दो, बाकी आप कोई भी सेवा दोगी मैं सब सेवा करूंगी, बस वस्त्र चेंज मत करो। बोले अरे तुझे इतने पुराने वस्त्र से इतनी आसक्ति क्यों है, क्योंकि दोबारा वो कर नहीं सकते ना वैसा सुबल नहीं किया था, आप बोले बोले नहीं इतना क्या इतनी आसक्ति है तुम चेंज करो वस्त्र, नहीं 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 बस ये नहीं करूंगी ये नहीं करूंगी बाकी सब कुछ करूंगी, कहती मैं कह रही हूँ वस्त्र चेंज करो, बोले नहीं नहीं करूंगी, ललिता विशाखा पकड़ो उसको उतारो उसके कपड़े, तो कहता नहीं नहीं आगे मत बढ़ना आगे मत बढ़ना, वो आती है पकड़ लेती है और वस्त्र खींचती है तो ऐसे झटका मारती है, वो दोनों जने दो दिशाओं में जाके गिरती है, अरे बाप रे बड़ी ताकत है इसके अंदर ये तो बड़ी ताकत, अच्छा ठीक है जाओ अष्टियों को राधा रानी बुलाती है सबको, जाओ सब लोग एक साथ इसके वस्त्र पकड़ो और वस्त्र खींचो, फिर जो है वो अष्टियाँ सारी आती हैं, कृष्ण सबको एक झटका मारते हैं सब सखियाँ गिर जाती हैं, कह रहे हैं बाप रे अब तक तो हमने सुना कि स्त्री अबला होती है ये कौन सी बला है इतना बल इसके अंदर कहाँ से, ये कैसी स्त्री है, तो कहते हैं अच्छा ऐसा करो सारी सखियाँ आ जाओ सब सखियाँ आ जाओ इसके वस्त्र खींचो, जब वस्त्र वस्त्र उतारो, कहते नहीं नहीं ऐसा मत करो मेरे वस्त्र 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 उतारो, कहते अरे तुम क्या कर रही हो सारी यहाँ पर स्त्रियाँ हैं तुम क्यों शर्मा रही हो क्यों क्यों नहीं वस्त्र उतार रही, नहीं 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 मत करो मेरे वस्त्र मत उतारो, सब सखियाँ ऐसा आती हैं जब वस्त्र खींचती हैं तो वस्त्र जो है उनके जब वस्त्र उतर जाते हैं और फिर दो आम नीचे आके करते हैं, तो इस तरीके से जो है फिर उनको मालूम पड़ता अरे ये तो कृष्ण है, सारी सखियाँ हंसने लगती हैं सारी सखियाँ हंसने लगती हैं, तो फिर कृष्ण जो है नीचे मुँह करे होते हैं, फिर धीरे धीरे मुख ऊपर करते हैं तो देखते हैं कि राधा रानी रो रही है, उन्हें बोला अरे राधा रानी, उन्हें इशारा किया तो सारी सखियाँ उस तरफ देखती हैं तो राधा रानी रोती होती है, तो उन्हें बोला कि अरे राधा रानी तुम क्यों रो रही हो क्या हुआ, तो राधा रानी कहती है कि देखो एक हफ्ते से कृष्ण हमारी सेवा कर रहे हैं, तो मेरा अपने जीवन को धुतकारती हैं कि देखो है कृष्ण ने क्या नहीं किया, मेरे चरणों में महावर लगाया है मेरे मेरे पैरों को पकड़ा है, इस तरीके से राधा रानी बहुत रोती हैं, तो कृष्ण जो है माथा ठोक देते हैं, ओहो ये मुझे अपनी सेवा नहीं करने देगी, फिर कृष्ण कहते हैं लेकिन मैं इसकी एक सेवा करूँगा जबरदस्ती एक सेवा छीन के लूँगा, वो सेवा क्या है, दुनिया ये जानती नहीं है कि राधा रानी कितनी महान है, कोई ये जानता नहीं है, लेकिन अब मैं राधा रानी कितनी महान है ये पूरे संसार को बताऊंगा, तो फिर वो महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो राधा रानी का प्रचार करते हैं, तो इस तरीके से जो है ये वही कारण होता है कि वो कृष्ण जो है वो प्रचार करते हैं, तो कृष्ण जो है, कृष्ण को कहा जाता है करुणा सिंधु, हाँ, ए कृष्ण करुणा सिंधु। तो कृष्ण करुणा जो है, करुणा कृष्ण के हृदय में रहती है, हाँ। लेकिन राधा रानी के पूरा जो शरीर है ना, अगर आप बोलोगे मैं करुणा को देखना चाहता हूँ कि करुणा कैसी होती है, क्यों नहीं करुणा को तो करुणा कैसे होती है मैं देखना चाहता हूँ, तो अगर कोई देखना चाहेगा तो वो राधा रानी है, करुणा का साक्षात श्री विग्रह श्रीमती राधा रानी है। तो अब हुआ क्या, अब कृष्ण तो करुणा सिंधु हैं, हैं, लेकिन अब उन्होंने क्या करा, राधा रानी के भाव को स्वीकार किया, राधा रानी के कांति को स्वीकार किया, हैं, अथवा राधा रानी के जो वो सागर में, करुणा जो सागर है वो महासागर है, और वो महासागर में सागर प्रवेश कर गया, हैं, अथवा सागर में महासागर ऐसा समझ लो प्रवेश कर गया, यानी राधा रानी प्रवेश कर गई, हैं, तो क्या हुआ, हैं, जैसे कि आप ओवरफ्लो हो जाता है, शिल्पबाजी लेते हैं ना कि सागर का कभी भी तट का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन अगर उल्लंघन करता है तो क्या होता है, बड़े बड़े शहरों को ध्वस्त कर देता है। तो अब यही हो गया इनके साथ, सुनामी आ गई, हैं, ये सागर में महासागर एंटर कर गया, हैं, राधा रानी एंटर कर गई, अब वो क्या हुआ, अब सुनामी आ गई, हैं, करुणा जो है वो कई गुना बढ़ गई, जो कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वो क्या कर रहे हैं, एकदम सुनामी की तरह दौड़ रहे हैं, सुनामी की तरह दौड़ना है, तो उस सुनामी की चपेट में जो भी आ रहा है, पात्र अपात्र स्थान, पात्र अपात्र नहीं स्थान स्थान, वो पात्र अपात्र नहीं देख रहे हैं कौन सा स्थान है क्या, सबको जो है वो जो भी उसकी चपेट में आता जा रहा है वो भक्त बनता जा रहा है, हाँ। तो ये सुनामी सुनामी चली है, कोई भी हो चाहे, यहाँ तक कि चाइनीज हो गए, पाकिस्तानी हो गए, सब उसकी चपेट में आ रहे हैं, हाँ। तो ये जो है वो करुणा का सागर बह निकला, जैसे आप लोग देखते हैं ना कई बार, आप हम लोग मायापुर जाते हैं तो वो जो टंकी होती है वो ओवरफ्लो हो जाती है तो उसमें से पानी निकलने लगता है, तो भक्त लोग बीच में प्रवेश कर जाते हैं फिर नहाते हैं, तो ऐसे जो है ओवरफ्लो हो गया, तो उसे उधार रह हो गया, तो ये जो है अब वो कुछ भी नहीं देखना है कि कौन क्या है, वो उसको कृष्ण प्रेम देते जा रहे हैं। तो एक जैसे धोबी भी था, धोबी को उन्होंने बोला कि बोला कृष्ण, तो बोला अरे हम यही कीर्तन उतन कर देंगे तो कपड़े कौन धोएगा, जाओ भाई हम नहीं बोलते, तो लेकिन फिर जो है महाप्रभु बोलते हैं कि कपड़े हम धो देंगे तुम्हारे, तुम बोलो कृष्ण, तो जैसे तैसे वो बोल देता है। एक बार कृष्ण बोलता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, भाव भाव के लक्षण जागृत हो जाते हैं, फिर उससे जो भी देखता है, जो भी उसके संपर्क में आता है, सब कृष्ण भावित हो जाते हैं। तो ये जो है क्या होते हैं, ये करुणा सिंधु। अब महा जब रूप गोस्वामी बात चैतन्य महापुरुष से मिले थे फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने क्या बोला था, नमो महावदन्याय, आप महादानी हैं, महावदन्याय है, महादानी है। तो महापुरुष बोलते हैं मैं महादानी, मैं कैसे महादानी हो सकता हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो भिक्षुक हूँ, मैं कैसे महादानी हो सकता हूँ। तो क्या बोलते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्योंकि आप कृष्ण प्रेम दे रहे हैं इसलिए सबसे बड़ा महादानी है। तो सबसे बड़ा महादानी कौन है, जो कृष्ण प्रेम देता है। तो कृष्ण जो है कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, हैं, कृष्ण कृष्ण प्रेम नहीं दे रहे हैं, कौन प्रेम देता है, रानी देती है, भक्त देते हैं कृष्ण प्रेम देते हैं। तो उनको पर महादानी क्यों बोला, महादानी कैसे बन गए, एक बार यशोदा माता और नंद बाबा दान दे रहे थे, दान दे रहे थे, तो वो दान देते 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 काफ़ी समय हो गया, तो कृष्ण को बुलाया, कृष्ण को बोला लाला अब तू दान दे, हम लोग थोड़ा जाके विश्राम कर रहे हैं। तो बोले ठीक है बाबा, तो वो गए विश्राम करने और ये दान देने लगे। तभी एक वहाँ पर बूढ़ा ब्रजवासी आता है, तो वो दान मांगता है, तो कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारा पात्र कहाँ है, दान कैसे लोगे। उन्होंने बोला कि मेरे पास कोई पात्र ना आए, पात्र ना आया तो भाई दान कैसे ले हुआ? हाँ तो बाने को भैया मोए पतो ना आए तो कैसे दान देगा भैया, तेरी जो इच्छा करो। तो बोले तुझे पात्र लाना पड़ेगा। बोले ठीक है हमें तुम्हारा दान ना चाहिए, है ना चाहिए ऐसा दान। बोले अरे कहा होगा? बोले अरे तू कहा दान देगा, कल हम गए थे बरसाना है वहाँ पे लाली दान दे रही थी, तो मैंने बोला लाली मेरे पास पात्र ना है। बोले कोई बात नहीं बाबा अपनो पात्र लेके आई बाने पात्र में दान दो, है तू कह रहा पात्र का है, पात्र पूछ रहा हूँ तू कहा दान देगा, हमें ना चाहिए था दान। बोले अरे तो यानी कि महादानी कौन हुए? हाँ महादानी श्रीमती राधा रानी है। वो इनका विचार है कि पात्र है कुपात्र कुछ देखती नहीं है। हाँ तो ये राधा रानी का, ये राधा रानी है। तो अब वही महादानी राधा रानी कृष्ण के साथ है, है? तो वो महावदन्या बन गए, नमो महादन्य है। तो आप क्या दे रहे हैं? वो कृष्ण प्रेम प्रदान। तो कृष्ण जो है वो कृष्ण को दे रहे हैं वो। तो इसलिए जो है ये जो महाप्रभु का महाप्रभु इस कलयुग में अवतरित हुए हैं, हाँ या स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो ये सबसे बड़ा अवतार है। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा, हाँ तो ये जो है सारे अवतारों का सार महाप्रभु है। कुछ कमियां आपने पढ़ाई होगा कि भाई कुछ कमियां रह गई थी, कई कई अवतारों में कमियां रह गई थी, लेकिन महाप्रभु के जब अवतार आए तो ये जो है आपने सुना ही होगा जो कि गौर गोविंद महाराज बता रहे थे कि कैसे नरसिंह भगवान में भी कमी रह गई थी। नरसिंह भगवान ने देखा कि खंभे से वो प्रकट हुए हैं, और अपराध महाराज के जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया, अपराध महाराज को जब चाटा तो उनको बड़ा आनंद आ रहा था, तो उन्हें देखा अरे ये तो मुझसे ज़्यादा आनंद ले रहा है, ये कैसा आनंद है? तो एक पिता जब पुत्र को आनंद देता है तो पुत्र को ज़्यादा आनंद आता है, लेकिन मेरा तो कोई पिता नहीं है, मैं क्या करूं? तो फिर मेरा पिता, मैं तो खंभे से प्रकट हुआ, अभी खंभा मेरा पिता है, इसी क्या मुझे आनंद देगा? तो आगे से मैं जब भी अवतार लूंगा तो किसी पिता को स्वीकार करूंगा। फिर राम जी के रूप में आए तो उन्होंने दशरथ और यशोदा माता को स्वीकार किया, तो उसका आनंद की है? नहीं कौन वहां कौशल लिया वो मैं देख रहा था, कौन ध्यान से सुन रहा है। तो इस तरीके से जो है उन्होंने कौशल्या और दशरथ का जो है वो प्रेम स्वीकार किया। अब जो है फिर भी कमी रह गई, कमी क्या रह गई? कमी रह गई कि वो भगवान राम के रूप में जो वासल जो ये आपके सख्य भाव का जो पूर्ण आनंद है वो उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, या मधुरता का भी जो है उनको पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, सीता जी जो है वो मर्यादा में रहती थी। तो फिर उन्होंने बोला कि अरे फिर कमी रह गई, लगता है मुझे फिर आना पड़ेगा, है अभी भी कमी रह गई। तो फिर वो कृष्ण के रूप में आया, जब कृष्ण के रूप में आया तो सखे का पूर्ण आनंद उन्होंने प्राप्त हुआ, और मधुरता के रूप में है राधा रानी, क्योंकि सीता जी का भी मान नहीं करती थी। तो एक बार राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि गृहस्थ लाइफ में सबसे बड़ा आनंद है जब कोई प्रिय रूठ जाती है और उसको कोई मना ले और वो मान जाए, तो आप लोग तो ब्रह्मचारी हैं, कुछ ग्रस्त लोग हैं उनको इस आनंद की प्राप्ति होती होगी। अरे वो तो लेकिन प्रिया जी का वो आनंद नहीं हो गया, वो आनंद अलग ही आनंद हो गया। सो फिर तो इस तरीके से जो है वो फिर जो है कृष्ण ने इस आनंद को लूटा, लेकिन अब फिर भी कमी रह गई। वो बोले कि इसका जो है लेकिन भक्त को जो है जब वो भक्त को क्या आनंद आता है, है जब वो प्रचार कर रहा है, या सन्यासी का सन्यास वो छह ऐश्वर्य भगवान के रूप में आते ना, एक सन्यास वो हो गया क्या कहते हैं अनाउंस, हाँ त्याग त्याग वैराग्य वैराग्य के रूप में अभी कमी रह गई। छह ऐश्वर्य भगवान के होते हैं लेकिन वैराग्य रूप नहीं दे पाए वो, कि वैराग्य वैराग्य का प्रदर्शन कैसे किया जाए। हालांकि हम लोग बोलते हैं कि गीता में भगवान वैराग्य दिखा रहे हैं कि वो अर्जुन का हाथ रथ हाँक रहे हैं, है तो ये बहुत बड़ा वैराग्य है, सारे ब्रह्मांड का जो मालिक है वो एक है रासलीला में गोपी को छोड़ देते हैं, वो भी है। तो लेकिन वो है अभी भी जो है उनको पूर्ण आनंद नहीं आया कि एक कमी रह गई है, तब वो उन्होंने संन्यास की जो ये दे गई कि तो महापुरुष के रूप में जो है वो फिर पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। तो ये जो है इस तरीके से जो है ये हुआ। अब ये जो है इस प्रकार महापुरुष की जो शरण पकड़ता है, है तो वो जो है तुरंत क्या हो जाता है, कृष्ण के बड़े नजदीक चला जाता है, कृष्ण भक्त बन जाता है। इसलिए लोचनदास ठाकुर एक लिख रहे हैं ना, के जाबे भाई बब सिंधु पार, धन्य कलयुग चैतन्य अवतार। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार हुआ है इसकी नौका में चढ़ जाओ। हाँ, तो ये जो है भव सागर बहुत आसानी से पार कर सकते हो एक बार। अब वही करुणा, करुणा जो है जब मेल्ट हो जाती है तो वो क्या बनती है, गुरु, गुरु बनती है। तो इसलिए कृष्ण करुणा मूर्ति, तो वो जो है करुणा जब बिगड़ जाती है तो क्या हो जाती है, गुरु बनते हैं शिलोपपाद। शिलोपपाद जी ने जब गौ नित्याय को स्थापित किया फर्स्ट टाइम, तो क्या गाते हैं उस समय, परम करुणा बहु दुई जना नित्याय गौर चंदा। कि वो उसको जब उन्होंने गाया तो वो अश्रुपात करने लगे, रोने लगे। तो इस तरीके से जो है उन्होंने देखा कि अब गौर नित्याय क्या करें, विदेशों में भी आके प्रचार कर रहे हैं, भक्त बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो जब ये गुरु देखते हैं कि ये जीव क्या कर रहा है, दुख की स्थिति को सुख में बदलने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो है प्रचार करने निकलते हैं, अपने आनंद को त्याग कर। वो भजनानंदी हैं, भजन में आनंद ले सकते हैं, लेकिन उस अपने आनंद को त्याग कर बद्ध जीवों की ओर जाते हैं, उनको प्रचार करते हैं, उनके अनुसार जो है वो एक्टिविटीज करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो जाते हैं। तो ये संसार में जो बद्ध जीव है लेकिन फिर भी जाना नहीं चाहता है, संसार विसनाले क्या है, दीवानशी या जले जुड़ाई तेन ना कहने उपाय। तो इस संसार में जो है जीव कितना जो है विषयों के अनल में, आग में जल रहा है। तो ये जब गुरु देखते हैं कि हाय इसकी क्या स्थिति है, ये है क्या और कर क्या रहा है, जो काम करने को आया है वो कार्य करने रहा है, और जो नहीं करना उसी में मग्न है। जैसे कि जड़ में पानी डालना है वो पानी डाल ले रहा है और सारी शाखाओं में आन ले रहा है। यहाँ पर तो इस तरीके से जो है जब ऐसा जब वो गुरु देखते हैं इसकी हालत है, कितनी खराब हालत है, तो वो जो है ऐसे भक्तों का प्रचार करते हैं। तो कृष्ण जो है वो कौन दे सकते हैं, भक्ति दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप भगवान के संपर्क में भी अगर आते हैं तो भी इतना जल्दी कृष्ण भक्त नहीं बन सकते आप, लेकिन जब भक्तों के संपर्क में आते हैं तो बहुत जल्दी जो है वो भक्त बनते हैं। तो ये भक्तों की कृपा होती है, क्योंकि भक्त कृष्ण जो है वो भक्तों की प्रॉपर्टी है, और कुछ भक्त के पास नहीं होता है, अकिंचन होता है, अकिंचन गोचरा, कि आप जो है क्या है, जो आप किंचन है उसी की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए जो है जो इसलिए कुंती महारानी बताती हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिवी है। तो इसमें जो है जन्म ऐश्वर्य और इसमें श्री में क्या है, बद्ध जीव मग्न रहता है, लेकिन जो अकिंचन होते हैं, जो कृष्ण जो भक्त होते हैं कृष्ण के, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि किसने बद्ध जीव की क्या हालत है, बेचारा कितना भटक रहा है कृष्ण के बगैर, तो वो जो है उसको क्या करते हैं, कृष्ण देते हैं। तो ऐसा साधु होता है। तो साधु जो है कैसे पहचाना जाता है, साधु अपने मनोवृत्ति से, एक्टिविटीज से और एटीट्यूड से पहचाना जाता है। ऐसा साधु ही जो है वो बद्ध जीवों पर प्रभाव डाल सकता है। तो शिल प्रभा जी का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, शिल प्रभा जी कैसे प्रचार किए आप सब जानते हैं। तो वो जो है वो पर दुखी दुखी होते हैं, कि ये बद्ध जीव कितना दुख में है, तो उसको देख कर वो दुखी हो जाते हैं। जैसे शिल प्रभा जी का आपको एक एग्जाम्पल पता ही है, जब वो जा रहे थे क्लब की तरफ तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था, गोल्फ खेल रहा था। तो शिल बाबा जी उसको देख कर आंसू आंसू निकले हैं। तो जब शिल बाबा से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है, तो उन्होंने बोला इस बद्धजीव की अवस्था देखकर, ये सुबह का समय है, ये मंगल आरती का समय है, जप का समय है, और ये क्या कर रहा है, एक बॉल को छेद में डालने की कोशिश कर रहा है, क्या मिल जाएगा। और देखिए अभी भी हैं बहुत से बूढ़े लोग हैं, जैसे अभी वो रिटायर हो गए ना कपिल देव, तो अभी वो क्या करता है, वो गोल्फ खेलता है। तो जितने क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ये सब रिटायर हो जाते हैं, तो फिर दूसरे दूसरे गेम में घुस जाते हैं। तो अगर वो बॉल जो है वो अगर छेद में चली जाती है तो इतना खुश होते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि जैसे बहुत बड़ा उन्होंने कुछ हासिल कर लिया। तो इस तरीके से शिल बाबा जी जो है देखते हैं कि ऐसे ये बद्ध जीव हैं, इनकी क्या हालत है, ये कृष्ण भक्त बन सकते हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं। तो फिर ऐसे जो है वो क्या होते हैं, करुणा सिंधु, क्योंकि करुणा सिंधु के अंश हैं, करुणा सिंधु के प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए जो है उनके हृदय में पूर्ण करुणा रहती है। और इतना ऐसे ऐसे करुणा सिंधु हैं, ये ऐसे करुणा सिंधु हैं जो गुरु होते हैं, वो ऐसे करुणा सिंधु होते हैं जिनका कोई ओर शोर नहीं है। एक सिंधु का भी ओर शोर होता है लेकिन उनका कोई ओर शोर नहीं है, और कोई तट नहीं है, और कोई गहराई नहीं ना सकते, कितनी गहराई है। तो ये ऐसे करुणा सिंधु हैं। तो आपने देखा होगा कि हैं कई बार हमारे शिल प्रभा जी भी हैं, गुरु महाराज भी हैं, ऐसे ऐसे अपराध को क्षमा कर सकते हैं जो कोई नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाए, लेकिन वो क्षमा कर देते हैं। एक बार एक हमारे गुरु महाराज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बार एक व्यक्ति को सब लोग बोल रहे थे कि अरे ये बहुत बहुत बदमाशी करता है, इसको यहाँ मंदिर में आने मत दो, ये है, बहुत सब लोग बोल रहे थे। एक एक व्यक्ति जो है वो बोल रहा था, तो लेकिन गुरु महाराज ने बोला इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, जब मैं एयरपोर्ट पे आता हूँ चाहे रात के 2 बजे हो लेकिन ये मेरे को लेने आता है, और जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो मुझे छोड़ने जाता है, ये इसका बहुत बड़ा गुण है। तो उसके बाद कोई नहीं बोला कुछ। तो ये इनकी जो है करुणा का कोई और छोर नहीं है, कितनी गहराई है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से जो है बद्धजीव जो है वो क्या करता है, इन चीज़ों में ही मग्न रहता है, संसारी चीज़ों में मग्न रहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है क्या है उसकी विजय कैसे होगी, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधरा, तो क्या आ गया, हाँ आप सब जानते हैं, तो मैं देख रहा था किस किस को श्लोक याद है। लेकिन जो है जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन क्या करता है, यानी कि दूसरे के धन को जो हड़प ले, दुर्योधन है, और उसके पिता भी ऐसे धृतराष्ट्र है, यानी कि दूसरे के राष्ट्र में जो कब्जा करे, भूमि पे कब्जा कर रहे, वो दोनों ऐसे ही हैं, बाप बाप बेटे का क्या जोड़ी है। तो वो जो है इस तरीके से मतलब संसारी जो है वस्तुओं में आनंद लेना चाहते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल जानते हैं कि जब कृष्ण जो है वो विश्राम कर रहे थे, तो पहले दुर्योधन बचा था वो कहाँ पे, सर पे खड़ा हो गया, और अर्जुन बचा था वो कहाँ हो गया, चरणों की तरफ पहुँचा। तो कृष्ण ने जब आँख खोली तो पहले आँख खोलेगा तो आदमी सामने देखेगा, तो उन्होंने अर्जुन को देखा। और ये अच्छा भी है, सुबह सुबह जब आदमी आँख खोले तो अच्छी चीज़ देखनी चाहिए, दुर्योधन को क्या देखेगा वो, तो अच्छा ही हुआ कृष्ण के लिए। तो कृष्ण ने बोला अरे कैसे आए, तो वो पीछे से बोलता अरे मैं भी हूँ, अरे तुम भी हो, कहाँ था भैया पीछे, अरे अच्छा अच्छा आ गया, आ जाओ भाई। तो बोलता भैया ठीक है भैया, तुम जब दोनों को वर मांगने के लिए बोला, तो बोलते हैं भैया ये सीनियर हैं, अब इनको ही पहले बोलो। तो कहते नहीं मैंने तो पहले आपको देखा, आप वर मांगो। तो बोलते भाई मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए। तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, कहता अरे मेरा अनुज है, अब इसने जो मांग लिया है तो उसको दे दो, हाँ जो पूछा वो मुझे दो, मुझे अपनी नारायणी सेना दे दो। वो बड़ा खुश होता है, वो क्या सोचता है यार कितना मूर्ख है, वो उसको ले लिया, वो हथियार भी नहीं उठाएगा, वाह उसको दे लिया, अजीब आदमी। लेकिन क्या है, विजय किसी हुई, उसी की हुई। तो इस तरीके से जीव जो है कृष्ण को छोड़कर बाकी सब वस्तुएं चाहता है, कृष्ण नहीं चाहेगा। लेकिन जो है ये जो गुरुजन होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, वो क्या देते हैं, उसको कृष्ण देते हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। एक बार तमाम कृष्ण महाराज बता रहे थे कि अगर आप राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, तमाम कृष्ण महाराज या कोई और बता, राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं जब वो देखती हैं कि कोई पुस्तक वितरण कर रहा है। हम अपनी औकात पे आ गए अभी। तो ये प्रचार प्रचार का माध्यम सबसे बड़ा है। श्रील प्रभुपाद जी अभी हम लोग मायापुर गए थे, तो वहाँ पर रामेश्वर प्रभु आए थे, तो रामेश्वर प्रभु वहाँ बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी ने मेरे को पर्सनल बताया, कहते कि कृष्ण मेरे को बोल रहे थे कि तुम जाओ है पृथ्वी पे, जाओ वहाँ प्रचार करो। तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं वहाँ प्रचार नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, माया बहुत माया है। तो कृष्ण ने बोला तुम माया में कभी नहीं फंसोगे, मेरी गारंटी है, तुम जाओ। तो बोले अच्छा ठीक है, कैसे प्रचार करें? तो उन्होंने बोला बस तुम पुस्तकें छपवाओ और बांटवाओ, ठीक है, उससे मेरा प्रचार अपने आप हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है किस लिए आए थे, पुस्तक वितरण, पुस्तक का प्रचार करवाने। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए बोला कि ये पुस्तक वितरण क्या है, मेरा हृदय है। तो यानी कि अगर हम लोग किसी को पुस्तक दे देते हैं तो क्या देते हैं, श्रील प्रभुपाद जी का हृदय दे दिया। तो उसका कैसे हृदय परिवर्तन नहीं होगा, आज नहीं तो कल नहीं तो अगले जन्म में वो बनेगा ही बनेगा, है उसका भी लहसुन प्याज छूटेगा, उसके भी घर वाले आएंगे रोएंगे, वो भी हमारी तरह होगा। तो जिसको भी हमने जो इसको भी हमने ग्रंथ दे दिया, सबके सब भक्त बनेंगे, बस समय की देरी है कि कब उसका जो है सुकृतियाँ इकट्ठी हो जाएँ, कब वो भक्त बन जाए। तो इस तरीके से जो है महाराज बता रहे थे कि राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं है जब कोई ये पुस्तकों का वितरण करते हैं। तो किसी ने बोला है बहुत ज़्यादा हो गई, थोड़ी गप मार दिया था। तो फिर एक शिला प्रभुपाद जी ने समझाया कि हाँ राधा रानी की, ये राधा रानी की सेवा है, पुस्तक वितरण करना राधा रानी की सेवा। क्यों, राधा रानी क्या चाहती हैं, राधा रानी चाहती हैं कि सारे जीव कृष्ण की सेवा में लगे और अपने अपने स्वभाव के अनुसार कृष्ण की सेवा करें, क्योंकि विभिन्न विभिन्न वैरायटी मिलेगी ना उसको, है कृष्ण को अलग अलग वैरायटी मिलेगी। तो हर जीव का अपना स्वभाव है, स्वभाव यानी अपना भाव ऐसा है, जैसे कि किसी को आपको जैसे मीठा पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कोई किसी सेवा पसंद है, तो हर जीव का अपना स्वभाव है। तो स्वरूप में भी ऐसे ही है, हर किसी का अपना स्वभाव है, अपनी सेवा है। तो राधा रानी चाहती है कि सारे जीव कृष्ण की सेवा में आए और सेवा करें। तो जब राधा रानी देखते हैं कि अरे ये जीव क्या कर रहा है, तो राधा रानी एक मतलब अपना विस्तार करती हैं किसके रूप में, भक्ति देवी के रूप में। और भक्ति देवी क्या करती हैं, इस ब्रह्मांड में भ्रमण करती हैं, और जब जब वो देखती हैं कि अरे ये जीव जो है कृष्ण की तरफ उन्मुख हो रहा है, तो उसके हृदय में प्रवेश हो जाती हैं और तब तक उसको नहीं छोड़ती हैं जब तक वो कृष्ण की सेवा में चला जाए। तो जो पुस्तक वितरण करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी ये करते हैं, वो भी ग्रंथ देते हैं किसी को ताकि वो कृष्ण की सेवा में जाए। तो जब राधा रानी ये देखती है कि अरे ये जीव तो वही कर रहा है जो मैं चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि ये भतीजी जो है सब कृष्ण की सेवा में आए, और ये भी वही कर रहा है, ये तो मेरी हेल्प कर रहा है, ये मेरी सहायता कर रहा है, तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और सबसे पहले उसी जीव पर करती हैं जो ये प्रचार करता है या पुस्तक वितरण करता है। तो बहुत प्रसन्न होती है। थोड़ा बजा दो यार, राधा रानी प्रसन्न हो रही, दिल्ली कोई उत्साह नहीं है। तो एक बार जो है एक बार तमाल कृष्ण महाराज जी सब बता रहे थे कि जो भी पुस्तक वितरण करता है उसको पूरी परंपरा का आशीर्वाद मिलता है, पूरी परंपरा का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ तक कि जब पुस्तक वितरण करते हैं तो शिव जी, ब्रह्मा जी और नारद जी डांस करने लगते हैं। तो आप सोचोगे थोड़ी ज़्यादा हो गई, ऐसे जी ब्रह्मा जी को क्या जरूरत है नाचने की है। तो फिर उन्होंने बताया कि देखो अगर एक हम लोग जैसे बद्ध जी हैं, कृष्ण बद्ध बन गए जैसे जैसे यथा तथा, अगर हमारे जो है टेम्पल नए नए बनते हैं या भक्तों की संख्या बढ़ती है तो हमें आनंद आता है ना, कितना आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। किसी को शायद आनंद नहीं आ रहा होगा, सबको आता है ना आनंद, बहुत अच्छा लगता है कि यार और भक्तों की संख्या बढ़े। हमारे यहाँ तो डेली अनाउंसमेंट होता है कि भक्तों की संख्या बढ़ाए, भगवान दादा पार्थी प्रार्थना करते हैं। तो एक बद्ध जीव, हम लोगों की ऐसी दशा है कि हम लोगों को आनंद आता है जब भक्तों की संख्या बढ़ती है। तो जो नारद मुनि शिव जी ब्रह्मा जी मुक्त जीव हैं तो उनको आनंद नहीं आता होगा, वो डांस करने लगते हैं, वो नृत्य करने लगते हैं कि अरे वाह एक जीव के पास और प्रभुपाद जी का ग्रंथ पहुंच गया, वो नृत्य करने लगते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यानी कि कितना आवश्यक है कि हम लोग क्या हैं यहाँ पे। हमने इसको इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि ये जैसे बता रहे हैं ना कि अर्जुन ने क्या करा, उसका उद्धार किया, अप्सराओं का उद्धार किया। तो ये उद्धार करने का है, बद्ध जीवों को उद्धार करने का तरीका है। तो यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे मैंने सोचा कि हम कैसे अपनी औकात में आएंगे, तो आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये एक बार महाराज और बता रहे थे कि जैसे कि एक भारतवर्ष में जो है हम लोग रह रहे हैं, बहुत सारे जीव रह रहे हैं, है? और कुछ जीव जो हैं बॉर्डर पर रह रहे हैं, वो भी भारतीय हैं, है? उन्होंने बोला कि कभी ऐसा कोई समय आए कि अन्न की कमी पड़ गया है सरकार को, आपूर्ति नहीं हो रही है अन्न की, तो क्या करेंगे सरकार? सबसे पहले किसी आपूर्ति करेगी उन बद्ध हम जैसे जीवों की, या जो बॉर्डर पे लड़ना है, जो बॉर्डर पे लड़ना है। क्यों? क्योंकि वो बहुत रिस्क ले रहे हैं, बहुत रिस्क ले रहे हैं, है? वो कुछ भी करने को तैयार है, अपनी जान देने को तैयार है, किसके लिए? हम लोगों के लिए, है? तो उसी तरीके से महाराज बोले थे कि जो ये पुस्तक वितरण करता है ना, तो वो बॉर्डर पे डायरेक्ट लड़ रहा है माया से, है? उसके माया से युद्ध चल रहा है, डायरेक्ट लड़ रहा है वो। तो कृष्ण जब देखते हैं या राधा रानी जब देखती हैं कि अरे ये जीव जो है इतना सेवा कर रहा है और इतना रिस्क ले रहा है। अब देखो कई बार पुस्तक वितरण में बहुत ज़्यादा समस्याएं भी आती हैं, हम बताएंगे नहीं, नहीं तो आप लोग करोगे नहीं, है ना, लेकिन बहुत आनंद भी आता है। लेकिन भक्त जो है फिर भी करते हैं, फिर भी जाकर प्रचार करते हैं और डायरेक्ट माया से युद्ध करते हैं। तो कृष्ण जब देखते हैं कि अरे ये तो ये जीव जो है मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो सबसे पहले किसकी पूर्ति करते हैं? उस जीव की करते हैं। तो इसलिए ये बहुत कितने बजे सोना तो चलना चल। तो इस तरीके से जो है हमारा मारा भूमि में जन्म हुआ है, तो हम लोग क्या करें, अपना जीवन सार्थक करके परोपकार करें। तो ये सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है, हाँ, कि बद्ध जीवों का उद्धार करें, बद्ध जीवों का प्रचार करें। ठीक है, नौ बजे तक ओ नौ, ठीक है। अच्छा, कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसी का? हाँ भाई, उत्तर है। हाँ अच्छा, हाँ ऐसे बहुत बार, कई बार बहुत 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 समस्याएं भी आती हैं। और हम लोग एक बार हम जो है ये रजौरी गार्डन में प्रचार कर रहे थे तो शॉप टू शॉप करते थे उस समय, नए नए थे, तो बिल्कुल पुस्तक वितरण हो नहीं रहा था, एक भी गीता नहीं गई मेरी। मैं पूरा बहुत प्रयास किया, बहुत लोगों को समझाने का प्रयास किया, नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा कि अरे क्या है, फिर मैंने वैसे गुरु महाराज को याद किया और शिल प्रभा जी को याद किया, मैंने सोचा एक आदमी से काम बनेगा नहीं। तो मैंने बोला भैया ऐसा करिए, आप खुद आके पुस्तक वितरण करिए, हैं, मैं तो हार गया, मैंने बहुत प्रयास किया, आप आओ। तभी मैं आगे बढ़ा तो एक फैक्ट्री वाला दिखाई दिया। मैं बोला बहुत बड़ी फैक्ट्री है यार, चलो यहाँ पे चलते हैं। लेकिन वहाँ पे गार्ड, बहुत बड़े बड़े गार्ड खड़े हुए थे, तो मैं सोचा यार ये जरूर रोकेंगे। लेकिन मैं चला गया, तो मैं एंटर किया, तो वो गार्ड कहते हैं महाराज जी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। पुस्तक पत्र में एक बहुत बड़ा फायदा होता है, ठीक है, आपको सब लोग महाराज बोलेंगे, सब लोग महाराज बोलते हैं, इसको हम कब बताएंगे कब महाराज बोलेंगे। लेकिन बाहर जब जैसे आप प्रचार करोगे ना, लोग महाराज बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, रोमांच कम प्रशुद्ध बहुत अच्छा लगता है। लगता है यही आदमी मुझे असल में समझा है। तो वो बोला भाई महाराज कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला क्या यार कहाँ जा रहे हो, सामने बुलाया। सामने बुलाया, मैंने और क्या, मैसेज जा रहे हैं क्या, हाँ कहाँ जा रहे हो, पहले पूछो तो यार। कहते अरे नहीं 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 गलती हो गई, गलती हो गई, अच्छा जाओ जाओ जाओ, चलो यार अंदर चला गया। फिर एक माँ वहाँ पे माता जी बैठी थी, क्या कहते हैं रिसेप्शन में, हैं, तो उसने बोला हाँ जी कैसे आए। मैंने बोला साहब ने बुलाया। कि साहब ने बुलाया, अच्छा कौन से साहब ने, बड़े साहब ने छोटे साहब ने। मैं बड़े साहब ने, अच्छा सर सॉरी सॉरी आप बैठिए, ठीक है। फिर मैं फ़ोन किया उसको कि अरे आपने ये हरे कृष्णा वाला को बुलाया क्या, ये आए हुए। कहते मैंने तो नहीं बुलाया है। मैंने बोला लाल मैं बात करता हूँ। मैंने बोला हरे कृष्णा मंदिर से आए हैं, तो हम लोग ये ग्रंथ लेके आए हैं, तो कृपया आप अगर आ सकते हैं तो, बड़ा अच्छा ग्रंथ है मेरे पास। बोला अच्छा अच्छा मैं इस्कॉन मंदिर से आया। मैंने बोला हाँ अच्छा मैं आ रहा हूँ, तो आ गए बाहर आ गए। बोले यार बैठिए बैठिए बैठिए। मैंने बोला नहीं हम ये ग्रंथ देने आए हैं, तो आप उसको स्वीकार कीजिए। कह रहे थे वो पंजाबी बाग से तो हर साल आते हैं दिसंबर में। मैं सोचा यार पंजाबी बाग को उड़ाना पड़ेगा। तो मैंने बोला अच्छा वो क्या क्या देते हैं आप लोग। बोला वो हर साल वो गीता दे जाते हैं, 50 गीता हर साल दे जाते हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं गीता नहीं, मेरे पास और भी किताबें हैं, देखिए ये कृष्णा बुक है, ये बहुत अच्छी किताब है, ये आप ले लीजिए। बोले हाँ ये तो नई किताब लाए हो आप, चलो ठीक है ऐसा करो 50 कॉपी भेज दो। हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, तो 50 कॉपी, और उसमें 50 कॉपी थी भी नहीं हमारे पास। तो मैंने बोला ठीक है हम आपको भेज देंगे, अभी आप चाहें तो अभी पहले पेमेंट दे दीजिए। बोले हाँ ठीक है पहले पेमेंट दे दीजिए हम, तो पेमेंट दे चला। तो इस तरीके से जो है मजा तो बजा दो। तो ऐसा भी बहुत बहुत बार ऐसा, कई बार बहुत बहुत जो है समस्याएं आती हैं। कई बार हम लोग का ऐसा भी हो जाता है कि कई बार झगड़ा भी हो जाता है कई बार, है ना। लेकिन फिर भी जो है मैंने देखा कि कृष्ण कई बार बहुत बचाव कर लेते हैं, हाँ बहुत जगह से बचा लेते हैं। बहुत ज़्यादा सुनाऊंगा नहीं, नहीं तो आप लोग समझ सोचोगे, हैं प्रभु जी को पता है। ऐसे हम लोग कुंभ मेला में भी गए थे, कुंभ मेला में लगाते हैं स्टॉल लगाते हैं, तो वहाँ भी बहुत विरोध करते हैं कई बार लोग, हाँ। लेकिन राम जी की कृपा से जय हमारी होती है, हाँ प्रभा जी बोलते हैं ना हिंदी लेक्चर में, समस्याएं बहुत आती हैं लेकिन राम जी की कृपा से जय हमारी होती है। सर हाँ अदर लैंग्वेज क्या होता है कि कह रहे हैं कि कई बार अदर लैंग्वेजेस होती हैं ना, तो उसमें क्या दिक्कतें आती हैं। वास्तव में लैंग्वेज की जो हम लोग जहाँ भी जा जाते हैं वहाँ लैंग्वेज जो भी चलती है, तेलुगू है तमिल है, वो लेके जाते हैं, और इंग्लिश ज़्यादातर साउथ इंडिया में ऐसी समस्या आती है कि वहाँ हिंदी नहीं चलती है, ज़्यादा वही लैंग्वेज लेते हैं। लेकिन हम लोग जैसे जैसे इंग्लिश में बात करके टूटी फूटी काम चला लेते हैं और लोग ले लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार एक बार एक हम लोग हैदराबाद में मोटिवेशन कर रहे थे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया, आप समझ जाओ कौन आया। तो व्यक्ति आया तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि आप ये गीता ले लो, तो कह रहा है कि मैं एक भक्त पहले उसे दे रहा था, आपका ये क्या नाम है उसका, लव लव दे रहा था उसको, बहुत कोशिश कर रहा था कि किताब ले लो किताब ले लो, वो ले नहीं रहा था। तो मुझे बताया कह रहा कि ये इनको आप किताब दे दो। मैंने बोला क्या हुआ आपसे, नहीं ले रहा, कह रहा नहीं ले रहा। ये कह रहा है कि मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ये पंजाबी जानता सर, हाँ हाँ सर पंजाबी जानता। तो मैंने बोला कि भाजी क्यों है, कहना नहीं देखो जी मैंने ना तेलुगु आँदी है ना हिंदी आँदी है ना इंग्लिश आँदी है, कुछ नहीं आता। तो मैं क्यों ले, मैं भाजी तेन इंग्लिश नहीं आँदी है, कहना नहीं। मैंने बोला सच्ची कह रहा है, कह ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਜੈਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜੈਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਤੋਂ ਜੈਟ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜੈਟ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਦੇਖੋ KRISHN ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ GITA ਗੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ। ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਮੈਂ 150 ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਜੈਟ ਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੁੜ ਬੋਲੇਗਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ 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 ਉਹਨੇ ਖੋਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ AND ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜੈਟ ਤੀ ਹੈ। ਆ ਬੋਲੇ ਗਿਆ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਪੜੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹਮੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਤੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਖ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ, ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ। ਜੋ ਵਹਾਂ ਕੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈ ਲੈਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਤੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸੇ ਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੋ ਕਈ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਮੰਗ ਲੈਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਲੀ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਨਕੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਸਭ ਕੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਆਪਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ।
हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ, पिछले 17 सालों से आप लगातार पुस्तक वितरण कर रहे हैं, लगभग प्रतिदिन निकलते हैं बाहर, इतने कठिनाइयों को सहते हैं। और पिछले कुछ सालों से तो दिल्ली में रहते नहीं, बाहर भ्रमण करते रहते हैं, कई बार बसों में ही सोते हैं। तो इतने बाहर रह के इतनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो क्या आपका साक्षात्कार थोड़ा शेयर कीजिए कि एक तरफ लगता है कि ठीक है मंदिर में रहें आराम से कम्फर्टेबल, एक है कि बाहर जाके इतनी कठिनाइयाँ सहनी, तो क्या कैसे आप साक्षात्कार कुछ है तो बताइए।
बाहर जाके बोझी एक वो एक कहावत है ना कि रमता योगी बहता पानी। जब योगी जो है यानी भक्त है, योगी वो नहीं भक्त मतलब जो है, अगर वो चलता रहे है तो ज़्यादा सुरक्षित रहता है, पानी जैसे रहता है एक जगह रह कर सड़ जाता है। तो जो श्री प्रभुपाद ने बोला ना कि जो ब्रह्मचारी है वो छोटा सन्यासी है जैसे है। तो सन्यासी की तरह जो है सन्यासी क्या करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, एक जगह रुकते नहीं ज़्यादा समय तक। तो उसी तरीके से ब्रह्मचारी को भी क्या है मूव करना चाहिए। और उससे बहुत मैंने देखा कि बहुत लाभ हुआ है। जिन समस्याओं से हम लोग जूझते रहते हैं कई बार बच नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग अगर घूमते रहते हैं ना, मूव करते रहते हैं, तो उन समस्याओं से बहुत आसानी से हम निकल सकते हैं। और बाहर जब रहते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग भक्तों के आसपास में ही रहते हैं, बिल्कुल इर्द गिर्द रहते हैं है। तो उसमें भी यह है कि हमारे ऊपर निगरानी रहती है, वो है। और बहुत ज़्यादा घुल मिलना भी नहीं हो पाता है, हर जहाँ भी जाते हैं हर बार नए लोग मिलते हैं है। तो ज़्यादा घुलना मिलना भी किसी से हो नहीं पाता है, क्योंकि घुलने मिलने से कई बार बहुत समस्याएँ आ जाती हैं। तो ये भी है। और सबसे बड़ा होता है कि हम लोग प्रचार करते हैं, जब आते हैं तो आप जैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसका भी बड़ा आनंद आता है। तो वो भी है। उससे क्यों है, एक बार आपके भक्त पूछ रहे थे कि प्रभु जी आप कैसे हमेशा उत्साही रहते हैं? मैंने बोला बस अपना प्रशंसा सुनते रहो, हमेशा उत्साही रहोगे। प्रैक्टिकल तो यही है हमारे लिए। थ्योरिकल तो शास्त्र से कुछ भी बता देंगे आपको, लेकिन प्रैक्टिकल यही है, जितनी प्रशंसा सुनते हो उतना आनंद बढ़ता है। आनंद और बुद्धिवर्धनम। बहुत आनंद है अगर हम लोग बाहर प्रचार करते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। हमारे तो कई भक्त लोग हैं बोलो ये वो कहते हैं कि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि ट्रैवलिंग में ही रहें, वापस आने की इच्छा नहीं होती उन लोगों की, वो ट्रैवलिंग में रहना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा अनुभव अनुभूति है। ठीक है सर बाबा यहाँ बताइए। हाँ नहीं सारी सेवाएं जो हैं प्रचार कार्य के, मैंने यही बोला प्रचार कार्य, लेकिन सारे प्रचार कार्य की सेवा में भी शिला प्रभा जी ने पुस्तक वितरण को अपना हृदय बताया। हाँ पुस्तक वितरण में बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन माई हार्ट। हाँ तो वो सारी सेवाएं पर ऋण है, प्रचार कर रहे हैं, आईवैफ के प्रचार कर रहे हैं, ये भी तो भक्त मत मना रहे हैं, इतने मत मना रहे हैं, तो सारी जो है सेवाएं इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें भी जो है शिला प्रभा जी ने पुस्तक वितरण को ज्यादा महत्व दिया तो ये है। लेकिन खाली पुस्तक वितरण, खाली पुस्तक ना देकर आप उनको फिर कल्टीवेट भी कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है कि उनका नंबर लें, उनको इनवाइट करें मंदिर में। जैसे मैंने भी पुस्तक पढ़ा था और काफी समय तक ये तो था कि हाँ इस कौन से जुड़ना है, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग ये मोहन प्रभु जी के संपर्क में आए हैं, इस गिर रुमणी प्रभु के संपर्क में आए, तब जो है हम भक्त बने। उससे पहले तो हमने नहीं बनना थे। तो ये आवश्यक है कि भक्तों के संपर्क में आए तो उनको जिसको हम लोग ग्रंथ देते हैं, जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ना, उनका नंबर भी लेना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। हाँ तो सारी सेवाएं इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा एक मेरा भांजा है तो उसको मैं जो है जो भी हमको लोग मिलते हैं हम उनका कार्ड लेके ना उसको देता था। तो आज उसने कई लोगों को भक्त बना दिया, अभी कुछ लोगों की दीक्षा भी हुई थी है पीछे, तो उनको भक्त बनाया। और कई लोग भक्त नहीं बनते हैं, कुछ खाली दान दे देंगे आपको, कुछ ना किसी ना किसी तरीके से वो कनेक्ट हो जाएंगे, कैसे भी कनेक्ट हो जाए इस कौन से भक्त बन जाए। तो कई लोग खाली दान देते हैं, हम आपको दान दे देंगे, बस वो दान देते हैं हर साल है। तो किसी भी तरीके से बाबा ने बोला कि अगर कोई एक पैनी भी दे रहा है इस कौन मंदिर में, एक पैनी भी दे रहा है, तो भी उसको इतनी स्वीकृति मिल जाएगी वो सोच भी नहीं सकता है उसको क्या मिल जाएगा। तो कुछ भी कैसे भी तरीके से जो है सब सेवा का माध्यम है। पुजारी हैं, पुजारी भी सेवा कर रहे हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। कृष्ण को शिला प्रभा ने बुलाया, बहुत सुंदर से सजाओ, इतनी सुंदर से सजाओ कि बाहर का जो है सौंदर्य उसको अच्छा न लगे। तो हमारे पुजारी लोग वही करते हैं, तो वो भी प्रचार कर रहे हैं। तो ये है कई तरीके से प्रचार का माध्यम है। हरे कृष्ण। अब प्रभु जी से अगर लोग कुछ लोग और प्रश्न करना चाहते हैं कर सकते हैं ना, ठीक है, पौने दस तक कर सकते हो, है ना। हाँ गुरु महाराज के साथ बहुत सदा घटनाएं हैं। एक बार शुरू में प्रभु जी जानते हैं कि एक बार यात्रा निकली थी ना कुरुक्षेत्र से वृंदावन, उस समय आप थे, तो उस समय मैं नया नया भक्त बना था, तो नया नया भक्त बना था, तो मुझे मोहन प्रभु जी ने पुस्तक वितरण करने के लिए बोला था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं जहाँ भी जाता था पुस्तकें लेके जाता था। तो फिर मैं ये भी कुरुक्षेत्र से वृंदावन रथ यात्रा निकल रही थी, तो उसमें मैं जा रहा था, तो मैंने देखा कि जब गुरु महाराज कीर्तन करते थे ना तो मैं कीर्तन अटेंड करने जाता था। तो मैं गया वहाँ पे, मैं कीर्तन किताबें हाथ में थी, मैं किताबें लेके नाच रहा था, तो महाराज ने मुझे देखा, तो महाराज ने मुझे ऐसे बुलाया ना, तो मैंने सोचा कि पहले मुझे लगा कि महाराज मुझे बुला रहे हैं, फिर मैंने सोचा यार मैं तो बहुत नया भक्त हूँ, थोड़ा सा जीव हूँ, यहाँ पे इतने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, महाराज मुझे क्यों बुलाएंगे तो मैंने फिर ऐसे इग्नोर कर दिया। फिर मैं नाचने लगा, थोड़ी देर बाद महाराज मेरे को देख रहे थे, फिर महाराज को जैसे मैंने देखा फिर महाराज ने बुलाया हैदराबाद जाओ। मैंने सोचा यार क्या महाराज मुझे को बुला रहे हैं क्या तो मैंने फिर ऐसे किया, कहते हाँ तुम इधर इधर। मैं चला गया महाराज के पास, और जैसे गया तो महाराज ने मुझे अपनी माला पहनाई, और बहुत ऐसे ऐसे खोपड़ी ऐसे महाराज करते हैं, ऐसे महाराज करते हैं, और बोला तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं समझ में नहीं आया, खोपड़ी तो पूरी हिल गई लेकिन क्यों हिली पता नहीं। मैंने बोला मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, महाराज ने मुझे माला क्यों बनाई, इतने बड़े बड़े यहाँ भक्त लोग हैं है, और बोले तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में आया था। फिर मैं करने लगा पुस्तक वितरण है। फिर थोड़े दिनों बाद मैराथन शुरू हुआ था, तो हमारे मोहन पोषी ने लेक्चर दिया था, वो बता रहे थे कि भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत प्रसन्न होते थे जब कोई पुस्तक वितरण करता था, तो वो इस तरीके से मसाज जैसे करते थे है। और शिला प्रभा जी भी बहुत प्रसन्न होते थे जब कोई पुस्तक वितरण आता था, तो शिला प्रभा जी ऐसे मसाज करते, वही हमारे महाराज भी करते हैं, जब कोई पुस्तक वितरण आता है तो उसके सर पे मसाज जैसे करते हैं। मेरे कई बार किया महाराज ने, तब उस दिन समझ में आया अच्छा ये खोपड़ी क्यों ली थी। तब से मैंने पता लगा कि अच्छा महाराज यानी कि पुस्तक वितरण से बहुत प्रसन्न होते हैं, महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वहीं से मैंने ठाना था कि हम लोग जो है पुस्तक वितरण करेंगे। तो बहुत तरीके से हम लोगों ने पुस्तक वितरण किया था है। तो लेकिन एक बार पुस्तक वितरण हम लोग बोलते थे, किताब लोग बहुत बोलते थे लेकिन लोग लेते नहीं थे। तो एक बार हम लोग कुरुक्षेत्र में यात्रा थी है, कुरुक्षेत्र में यात्रा थी, तो हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो पुस्तक बहुत कम जा रही थी। तभी एक हमारे साथ एक भक्त आ गए, बोलते चलो हम लोग साथ साथ गुरुशन करते हैं है ना। और वो भक्त हैं हिजगिरे सुपर्ण किशोर है। तो उन्होंने बोला साथ साथ पुस्तक वितरण करते हैं, तो हम लोग साथ साथ पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो एक लड़का साइकिल से आ रहा, साइकिल से आ रहा, हम लोग यात्रा काफी आगे निकल चुकी थी, हम लोग पीछे पीछे पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो एक लड़का साइकिल से आया तो उसको रोका, हमने बोला एक किताब ले लो, तो ले नहीं रहा था। तो रुपण किशोर ने बोला अरे 10 रुपये का दान दे दो यार यात्रा के लिए। बोला अच्छा ठीक है, तो उन्होंने 10 रुपये दान दे दिया। तो उन्होंने आइडिया दिया कि देखो यार ये इतना गरीब आदमी है, हमने इसको दान के लिए बोला, इसने तुरंत दे दिया, किताब के लिए बोले थे नहीं ले रहा था, तो हम लोग ऐसे क्यों नहीं कर सकते, हम लोग दान मांगे सबसे। तो मैंने बोला यार ये तो आइडिया अच्छा है यार। तब से हम लोग किताब देते हैं, हम बोलते हैं कि आप थोड़ा दान दान करो मंदिर के लिए है। तो उससे हमने देखा कि पुस्तक वितरण बहुत बढ़िया। तो ये सब प्रभु जी की कृपा है, सच बता रहा हूँ मैं ऐसा समय है, ये वहीं से हम लोगों ने आरंभ किया ये दान दान का। तो सारा श्रेय प्रभु जी का जाता है। बोलो नौ, हाँ आपने 9:30 बोला था नहीं आप आपके बारे में नहीं बोलूंगा, एक लास्ट प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु जी के बारे में मत बोलना। महाराज से कैसे मिला? फिर वो लंबी चली जाएगी कहानी। ठीक है, फिर बाद में अकेले में बता देंगे इनको। ठीक है, सिर्फ बाद की।